पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्डञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायें दामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम चरणान्तिके। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्त्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना बिन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। আজকে যেখানে যাওয়া হয়েছিল তার কথা হয়েছে তো সব, যা যা পর হম লোক গে থে ও সব তো হুই। ওহাঁ কে লিয়ে বোল দিয়া, কুমুদ বন কে লিয়ে বোল দিয়া থা দিখলা করকে, নহীঁ নহীঁ তো ওহাঁ সে প্রণাম করকে দিখলা দিয়ে যে কুমুদ বন হ্যায়, নহীঁ দিখলা হ্যায় তো ঠিক। कोई कोई कहते हैं कि वो बहुला बन में बहुला सखी कौन थी, बहुला बन में बहुला सखी कौन थी, कोटी कोटी गोपियां थी उसमें किसका किसका नाम बतलाएं, किंतु एक सखी थी उसमें से बहुला। बहुला माने बहु लाती, जो प्रेम को इतना लाती है जो कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। जैसे ललिता सखी जो ऊंचा गांव में रहती थी, जैसे विशाखा जी का कमई करला स्थान है जन्म स्थान, जैसे चित्रा सखी का चिकसौली, वृंदा देवी का ये वृंदा, ये वृंदावन, ऐसे सब सखियों का जैसे कि सुदेवी औरंग देवी का नरिशेमरी, इस तरह से बहुत स्थान हम लोग जाएंगे तो वैसे बहुला देवी जी का वहां पर स्थान था। और राधा जी की सहेलियों में से एक है, उनका स्थान से ये बहुला वन। बहुला वन बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते थे और उस वन में गोपियां सब पुष्प चयन इत्यादि करती थी, कृष्ण से मिलित होती थी। बहुला इज अ वेरी प्रोमिनेंट सखी ऑफ श्रीमती राधिका। His village was there and he used to live in Jawat with Srimati Radhika, serving Radhika and Krishna together. So there were been so many sakhis like Lalita Sakhi in Ucha Gaon, Vishakha in Kamai Karala, Brinda here and Devi Sudevi Narishemari, Chitra Chikasauli. So you cannot count all. So Bahula Dev was one of the sakhi. And you can have heard about Mahaprabhu that when he came, Sukh and Sari, they began to discuss something. Sukh was towards Krishna, he was glorifying Krishna, and Sari was glorifying Radhika. But o khane kuch bole diye chotur sankhepe o yathesht ar bolte hai bhai yathesht ami ei prasanga arambh kare. All the places where you are going, oh, very important places. आप लोग जहां जा रहे हैं जेखाने जाच्छेन उटा भारी, बहुत उच्च वो स्थान है। अकेले जाने से नहीं समझ में आएगा, भक्तों के साथ में जाने से आप लोग कुछ समझ सकते हैं। If you are going alone, You cannot realize anything, you cannot hear. You will see a dry land everywhere and some water in ponds. But if you will go with devotees, you can realize something, you can understand them, and it may be that some honor may come in your heart. And then with honor you can touch that land. And that land may be merciful to you. Abham राधा दामोदर प्रसंग पर आ रहे हैं. लाइट चलेगा लो. अच्छा. रुदन तंग मुहुर नेत्र जुगमंग मिजंतम करांभोज जुगमेन सातंक नेत्रम मुहुर्श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैवं दामोदरंग भक्ति बद्धम. कृष्ण रो रहे हैं. भैया यशोदा ने उनको मारा नहीं और यशोदा जी ने उनको बांध दिया. इसका प्रसंग हम लोग सवेरे बतला चुके हैं. हाउ यशोदा बाइंडेड कृष्ण. We have in detail discussed all these things. He could not bind him by rope. Any rope cannot do like this. Anyone cannot bind Krishna by rope. He can be binded by only love and affection. And love and affection, but like, not like Hanuman, not like Uddhava, not like Narada, they cannot bind. Only the love and affection like gopis, Yashoda Maiya, they can find it. So, we have discussed something. Hum logo ne iske sambandh mein batlaya hai. Ab, aage ka hum kuch batla rahe hain. Muhushwasa kampa trirekhanka kantha. स्थितग्रैवं दामोदर भक्ति बद्धम. भक्ति से बंधन में आए, भक्ति के द्वारा बांधे गए और भक्ति के द्वारा स्वयं ही बंध गए. दोनों बातें हैं. किंतु भक्ति के द्वारा कौन सी भक्ति? ब्रज की प्रेममयी भक्ति के द्वारा बंधे. तो कैसे? कृष्ण को जब उन्होंने बांध दिया यशोदा मैया ने, कृष्ण बड़े रो रहे थे, बहुत रोने लगे. किंतु मैया ने नहीं छोड़ा, बांध दिया. बांधने के बाद में बच्चे वहां पर एकत्र हो गए. आंख में लगता है भाई, कोनो दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही ठीक है. जेंटर खराब हो गए थे, ठीक है, ऐसे ही सुन रहे. क्या बतला रहा था? कैसे बंदे? तो वो रो रहे हैं. आज यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया. कैसे बांधा? पहले कृष्ण की कमर को बांधा, एक बार फेटा लगा करके ऐसे गांठ लगा दी, और फिर गांठ से एक उधर वाला इधर निकाल करके फिर उखल को बांधा पीछे से, और पीछे से बांध करके ऐसे गांठ दी जो कृष्ण का हाथ वहां पर ना पहुंच सके. अपने पीठ तक पहुंच सकता है, क्योंकि ओखल जरा मोटी, इसलिए ओखल को पार करके जहां पर बांध असर लगा है गांठ, तीन चार गांठ अच्छी तरह से दे दी, खूब जोर से, जो खुल न सके. व्हाट आई टोल्ड? ओ यू गॉन लिटिल बाय लिटिल. भारी ढीठ कखन जे की करे एखन ताके जे आमी मारते जाच्छिलाम जदि छेड़े दी ताले बाड़ी थेके कोथाओ पालिये जाबे ब्रह्मांड घाटे निकटे हय तो जमुनाते ना लाफिये पड़े जमुना में न कूद जाए। इसलिए डर से रख दिया जी अभी बांध करके रख देंगे जरा शांत हो जाएगा तो उसे खोल करके अपना स्तन से दूध पिलाएंगे शांत हो जाएगा भूल जाएगा। इसलिए जो कहीं भाग करके ना चला जाए। इतने में वहां दाम श्रीदाम सुबल मधुमंगल स्तो कृष्ण लवंग उज्जवल सुबल सखा मधुमंगल कोकिल भृंग सब सखा लोग जुट गए सब नंगे धड़ंगे जुट गए वहां सनत सनंदन सनत कुमार की भांति और सभी कृष्ण को रोता हुआ देख करके ताली बजा करके हंसने लगे किंतु मैया जब तक थी तब तो दूर खड़े थे निकट में कोई डर के मारे आज नहीं आया किंतु जसोदा मैया जब उनको बांध करके चलने लगी तो उनको बुलाया ए इधर आ मैं जा रही हूं घर के काम में और ये बांध करके रखा है यहीं पर रखना इसको पहरा देना सखाओं को बच्चों को बोला और उनको देख करके मन तो वहीं पर रह गया कृष्ण के यहां और वो घर के दूसरे कामों के लिए चल पड़ी। अभी घर में झाड़ू नहीं दिया दधि मंथन नहीं हुआ अभी रसोई का काम भी कुछ नहीं हुआ और रोहिणी मैया भी उसी के साथ में अभी लगी हुई हैं इसलिए घर के काम से निपटने के लिए चली किंतु मन नहीं था शरीर गया केवल मौन गेलो शरीर मौन टा ओखनी थाकलो कृष्ण निकटे थे हाय हाय हमें की खराब काज करलम अनुताप होच्छे भीतरे अनुताप करछेन केन बेटाके बांधना अनुताप करते करते जाच्छेन कोनो काज करते जाच्छेन मन लागछे ना कोनो रकम भावते कोनो काजेते एकटु मन दिए करते किंतु दृष्टि आछे ओई दिके मन टा आछे ओई दिके ছেলেরা এখন যশোদা মাইয়া চলে গেলেন তখন ছেলেরা নিকটে এসে আর তালি বাজিয়ে দিয়ে আর কৃষ্ণকে ও চিড়াইতে লাগলো চিড়াইতে মানে উনকো উপহাস করতে লাগে উপহাস করতে লাগলো তালি বাজায় আর করবি আর করবি আর করেগা ইস তরহ সে চিড়ানে লাগে। अब कृष्ण उनके चिढ़ाने से वो भी हंसने लगे अब धीरे धीरे आंख में आंसू आना तो नया बंद हो गया किंतु वो काजल समेत जो था वो सूखा यहां पर अब बंद हो गया ना ये कहां से आया यहां पर मत लगाओ यहां से तो देखो लोगों को कष्ट ना हो ये क्या लाइट है अच्छा तो ठीक तो बच्चे कृष्ण को चिढ़ाने लगे ताली बजाने लगे और कृष्ण भी हंसने लगे अब तक तो रो रहे थे किंतु जसोदा मैया के जाने से वो बच्चे हंसने लगे तो कृष्ण भी हंसने लगे किंतु यहां से यहां तक सारा दाग काला पड़ा हुआ है। इसके बाद में इतने में बलदेव प्रभु आ गए। बलदेव प्रभु कहां थे? उपानंद जी के घर में थे। वो आ गए, उनके मैया भी उनके साथ में गई थी, रोहिणी मैया भी इतने में वो आ गई। बलदेव जी जब आए तो कृष्ण को बंधा हुआ देखा और रोने का चिन्ह देखा, अभी आंखों के आंसू काले सूख नहीं पाए थे, अभी कालों आंसू गुली अभी सूख है नहीं, किंतु कान नाता बंद हो गए थे। कृष्ण बलदेव देखे कृष्ण के सखागण के जिज्ञासा कर लेने जिज्ञासा किया, अरे भैया को कन्हैया को कौन बांधा? किसी के कान में पूछा? मधमंगल से, श्रीदाम से या किसी सखा से?
दो एक बार पूछने पर वो तो डर रहे थे, यशोदा मैया का नाम नहीं लेना चाहते थे डर के मारे। ये डर किस चीज का? प्रेम का डर। इसलिए कुछ नाम नहीं लेना चाहा। किंतु जखन बार बार बोलाते तखन श्रीदाम अथवा जय के हो सुबल बलदेवर काने थे बोल लो, उनके कान में जाकर के कहा, क्या कहा? अरे माँ यशोदा बेंदे छे, माँ बेंदे छे, यशोदा नाम नहीं लेंगे, मैया ने बांध दिया, मैया ने। तो वो जो तम तमाए थे यदि कोई बांधा होगा तो हमको उसको दुरुस्त कर देंगे, हमारे कन्हैया को कोई बांध दे। और वैसे बलशाली भी थे छोटी उम्र होने पर भी, किंतु मैया के नाम सुनते ही उनका सारा क्रोध दब गया, शांत हो गया, कुछ नहीं बोल सके। प्रेम ही एक ऐसा चीज है। ये बलदेव जी को यशोदा मैया अधिक प्यार करती थी कृष्ण से, और रोहिणी मैया किसको अधिक प्यार करती थी? कृष्ण को अधिक प्यार करती थी। यशोदा जी का प्रेम दोनों पर स्नेह बराबर था, किंतु होने पर भी बलदेव को अधिक ऊपर से स्नेह दिखलाती थी, और रोहिणी का सचमुच में कृष्ण के ऊपर में ही अधिक प्यार था। इसलिए यशोदा मैया का नाम सुनकर के बलदेव जी शांत हो गए। मधमंगल दौड़ता हुआ है करता हुआ वहां पर उपस्थित हुआ, और उपस्थित होकर के जोर जबरदस्ती वो खोलने के लिए गया, हम खोल देंगे। जब वो खोलने के लिए गया तो इतना जबरदस्त गांठ खोल नहीं सका। इतने में दूसरे लड़के उसको धक्कियाकर धक्का देकर, अरे मैं खोलता हूं, तुम नहीं खोल सकता। तीसरे चौथे पांचवे सभी जुट करके एक दूसरे को हटाने लगे और खोलने की चेष्टा की, किंतु कोई नहीं खोल सका। वात्सल्य रस का गांठ वाला सख्य और दास खोल सकते हैं, ये कभी भी संभव पर नहीं, ये संभव नहीं। इस गांठ को दो ही खोलने में समर्थ हो सकते हैं, या तो वात्सल्य रस का की जो मूर्ति है वही आए, चाहे नंद चाहे यशोदा चाहे गोपियां खोल सकती थी, तो गोपियां वहां पर नहीं आई। इसलिए गोपियों का शक है नहीं खोल सकते, कोई नहीं, रुक्मिणी सत्यभामा भी नहीं खोल सकती, ये लोग खोलने में असमर्थ हैं। बलदेव जी भी नहीं खोले, वो भी नहीं खोल सके। इसके बाद में कोई नहीं खोल सका, सब एक दूसरे को इधर से हटा रहे हैं और खोल रहे हैं, मैं खोलूंगा, और सभी लोग मिलकर के खोलने लगे, किंतु खुला नहीं। इतने में कृष्ण को एक याद आई, याद आई क्या? उनको याद आई, तेवर्षि में प्रियतमो जद इमौ धनदात्मजौ तत्तथा साधिष्यामि जद गीतम तद महात्मन। ओ कृष्ण यहां मधुर लीला में व्यस्त हैं, किनको उनको याद आ गई? अरे भाई तो फिर ऐश्वर्य लीला हो गई। यदि कृष्ण गोपियों के साथ में 2400 घंटा व्यस्त हैं, उनके साथ में विलास में, और कहीं पर कोई भक्त यदि कृष्ण की आराधना थर्ड क्लास का भी, दास्य का भी, या नहीं जगत का भी कोई भक्त प्रार्थना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत आराधा कांत नमस्तुते, अथवा उसी समय में जिस समय कृष्ण रासलीला में व्यस्त हैं और गज और ग्राह में युद्ध हुआ और ग्राह ने गज को पकड़ लिया, और उस समय में गज हाथी पुकारने लगा, हे क्या, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारी, हे गोविंद आमी आमाके रक्षा करो, आमी संपूर्ण अपना रूपे आमी निर्भर हो। आ कृष्ण रास करछेन, सुनबेन कि ना सुनबेन, सुनबेन कि ना
सुनबेन,
किंतु सुने तिनी की करबेन, तार भीतरे ते बहु लोग आछे, नारायण नचन कराम कारनाब दिशाई खिरो दशाई बामन नारायण राम निसिंह कल्की बामन कोटी कोटी अवतार तार भीतरे ते जार संगे संबंधित ना ठीक एक तो इंगित कर दी बना चट कर जिए तार को रखा कर बे माधुर्य कुना हानि होलो ना ना ऐश्वर्य शक्ति थाकु अन्नाई थाकु তার কোনো মানে না, থাকতে পারে নাইও থাকতে পারে, কিন্তু নর লীলাকে অতিক্রম করে যে লীলাটা হয় না, নর লীলার অনুকূল যে লীলাগুলি হয় তাহাকে বলে মাধুর্য, আর ঐশ্বর্য কাকে বলে, নর লীলাকে অতিক্রম করে তাহা যে সমস্ত লীলাগুলি হয়, নর লীলা যে মনুষ্য নেই কর সকতা ऐसी लीला को जो करते हैं जो किसी के लिए संभव नहीं है, उस लीला को यदि करते हैं तो यह ऐश्वर्यमय लीला हो जाएगी। कृष्ण की समस्त जितने भी लीलाएं हैं आदि से अंत तक ये सभी ऐश्वर्य लीला है ना, ऐश्वर्य लीला, गोवर्धन को धारण किया यह ऐश्वर्य लीला, किंतु छोटे से बच्चे ने उठा करके रख लिया इसलिए माधुर्य ही हुई, और सब गोप गोपी लोग देख रहे हैं छोटा सा गोपाल ये नहीं उठाया, उठाया किसने, उठाया बड़े बड़े जो वृद्ध है वो तो देख रहे हैं कि नारायण की कृपा से ये हो गया, नारायण ने उठा दिया, और सखा लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने उठा लिया, हम लोगों ने रखा, इसलिए ये माधुर्य लीला ही रही। कालियत को दमन करना ऐश्वर्य लीला, किंतु गोपियां देखकर किसी छोटे के बच्चे के रूप में ही कृष्ण, चोटी बंधी हुई है उसमें मोर मुख का पंख लगा हुआ है और बंसी यहीं पर लगा रखा और लेकर के कूद गए हैं, पीताम्बर भी यहां पर बांध रखा और उसी में नृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर में, है तो ऐश्वर्य लीला, किंतु ऐश्वर्य लीला होने से क्या होगा, छोटे बच्चे के रूप में ही उसके ऊपर में नृत्य कर रहे हैं और सभी लोग देख करके अरे मरा 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 उसको बांध लिया है सांप ने, इसलिए ऐश्वर्य लीला नहीं हो। यहां पर भी जसोदा जी बांध रही ऐश्वर्य लीला, महाश्चर्य लीला हुई, किंतु अपने बच्चे के रूप को त्यागा नहीं, इसलिए ये माधुर्य लीला ही है, बांध नहीं पा रही थी इसलिए उनको याद आ गई, इसलिए ऐश्वर्य लीला नहीं हुई, माधुर्य के अंतर्गत ही है, इसलिए उनको याद आई भक्ति बद्धम, भक्ति के द्वारा मैं बद्ध हूं, जिसके हृदय में भक्ति है उसके द्वारा मैं बद्ध हूं। अरे नारद जी एक बार जा रहे थे कैलाश और रास्ते में शंकर जी के कृपा पात्र कुबेर जी के पुत्र मिले, एक जितना भी दुष्ट लड़का हो और हमारे मित्र का लड़का है तो क्या करेंगे, जितना भी दुष्ट है ना, देखो हमारा मित्र का लड़का कैसा खराब हो गया, ये सुधर जाता तो बड़ा अच्छा होता, एक महादुष्ट छेले, किंतु हमारे यदि बंधु छेले है तले तहार प्रति एक तो स्वाभाविक प्रकार एक प्रीति थाके दया थाके, तो ये नारद ऋषि जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे शंकर के यहां और उसी के पास में कुबेर जी का राजभवन और उसी के पास में एक सुंदर सरोवर पर ये दोनों उनके लड़के नलकुबर और मणिग्रीव बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गंधर्व हैं,
खूब खूबसूरत, विद्वान और धनवान, विश्व में सबसे बड़े कुबेर धनी के पुत्र, उनमें सब प्रकार का अभिमान, जन्म श्रुत सी भी एधमान मदह, जिनके अंदर में ये चार दुर्गुण होते हैं, जन्म उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य धन संपत्ति जिसको हो, जिसको विद्या का अभिमान है और जिसको रूप का अभिमान है, किसी कोई गुण नहीं है, पढ़ा लिखी भी नहीं कोई लड़की है, किंतु बड़ी सुंदरी है, विश्व की प्रतियोगिता में वो विश्व में सबसे बड़ी विजेता बन गई, विश्व सुंदरी, कोई गुण नहीं है, बस उसके मुस्कुराने पर ही जगत के लोग फिदा हो जाएंगे, और बड़े बड़े धनवान लोग उसकी सेवा करने के लिए, बड़े बड़े सुंदर धनवान सब लोग, बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाएंगे, वहां पर भक्ति भी न जाने कहां चली जाती है। जो विद्वान बड़े बड़े लोग हैं उनको विद्या का बड़ा भार भी मान होता है, राजा नहीं सर्वत्र पूजित होता, विद्वान बड़े पूजित होते, जहां जाएंगे विद्या का ये सब पूजित हो जाएंगे, उनको लोग पूजा करेंगे। धनी में यदि वो धनी है, काला कलूठा दांत इधर निकला हुआ, तो अभी धन के बदले लाखों अश्वराओं को ले आएगा अपने यहां, और मदिरा इत्यादि पी करके जगत का ऐश्वर्य भोगा, बड़े बड़े राजा यहां तक कि प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री भी उसकी बात को सुनने के लिए बाध्य होंगे। समस्त मदों में धन मद सबसे बड़ा, आइए चारों मद उसमें, इसलिए वे नंगे होकर के अस्पराओं के साथ में नित्य कर रहे, वहीं पर गान कर रहे, मदिरा पान करके उसके साथ में व्यभिचार कर रहे। नारद जी जब वहां पर आए तो देखा, वो जानते हैं कि हमारे पिताजी के ये मित्र हैं और बड़े भारी समर्थवान ऋषि है, किंतु मदिरा पान के कारण और धन में मद होने के कारण, उच्च कुल में जन्म और विद्या, चारों दोषों से युक्त होने के कारण परवाह नहीं किया, और नंगी होकर के उन औरतों को जो कि निकल करके तालाब से सरोवर से नारद जी को प्रणाम किया, और झट अपने कपड़ों को पहन करके पेड़ के नीचे में छिप करके खड़ी हो गई, और वो वहीं से गाली का गलौज कर रहे स्त्रियों को, और इनको जो कहां से ये बेहाया बदमाश इधर से आया, और नारद जी को भी गाली देने लगा। नारी है, देखो तो सही, धन का इतना मत, रूप का इतना मद, ऐश्वर्य का इतना मद, और मदों का मद पी लिया, इसका मद जो किसी को अपने सामने नहीं समझता, अच्छा मैं दुरुस्त करूंगा। यदि किसी को कांटा नहीं अपना स्वयं फूट गढ़ता, यदि कारो कांटा ना फूटे, कांटा स्वयं नहीं गढ़ता, तो दूसरे का कष्ट नहीं समझता। मछलियों को काट देगा, गायों को, जानवरों को काटेगा, और उसको थोड़ा मोटा सुई लेकर के घुसेड़ दो तो वो समझेगा हाय 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 मरा, या तलवार से उसकी कोई हाथ काट दो तो देखो जो क्या होता है। तो जब तक की कष्ट अनुभव नहीं होता तब तक नहीं समझता है, अच्छा तो ठीक है, ये मत होकर के एकदम पाषाण जैसे जड़ हो गए हैं, पेड़ों जैसे जड़ हो गए हैं, जाओ अभी तुरंत पेड़ होकर के जन्म ग्रहण करो, तुमको कोई लज्जा हया बेहया इत्यादि कुछ नहीं, बस जाओ और लाखों वर्षों तक ऐसे ही बने रहो। जब इस प्रकार से दिया था तब झट उनका शरीर जड़ होने लगा, और सचमुच में पेड़ उसी समय में होने लगे, हम जैसे ने जे किसी को गाली देंगे तो साथ ही साथ पड़ जाएगा। नारद जी अद्भुत आदमी कहा, और साथ ही साथ हो गया, जबकि वो जड़ होने लगे तो उनके चरणों में गिर गए, क्षमा कीजिए हम
आपकी अवज्ञा की, बहुत बड़ा भारी अपराध किया, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो जाओ तो मैंने कह दिया ये तो होगा ही, किंतु हमारे मित्र के लड़के हो, और साधुओं का बिगड़ना और प्रेम करना दोनों एक ही तात्पर्य में होता है, समझना। यदि गुरु किसी को प्रेम से किसी चीज को समझाता है तो भक्ति के लिए ही समझाता है, और यदि किसी पर बिगड़ता है, किसी को शासन करता है तो किस लिए? उसकी अनुग्रह है, उसकी भक्ति नष्ट न हो और भक्ति बढ़े, इसलिए करता है। मूर्ख शिष्य नहीं समझता, मूर्ख लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। वो भी नहीं समझ सका जैसे नारद जी के इस क्रोध का खराब परिणाम होगा कि बुरा परिणाम होगा, नहीं समझ सका। साधु संतों का क्रोध भी हमारे मंगल का कारण होता। कृष्ण पुतना को मारा, अघासुर को मारा और सब राक्षसों को मारा, उसका क्या हुआ? कोई अमंगल हुआ? कंस को मारा, किसी को मुक्ति हुई, किसी को गोलोक में माता की गति मिली, किसी को सारूप में मुक्ति मिली, किसी को कुछ मिल गया। इसलिए यदि क्रोध करके भी भगवान का स्मरण करता है, क्रोध रूप में भी, द्वेष से भी करता है, किसी रूप में भी करता है, किसी को कृष्ण का रूप देख करके और उसको कृष्ण से मिलने की लालसा हो गई, कृष्ण को भोग करने की, हाँ बड़ा सुंदर है कृष्ण, ये बुरा होगा? नहीं होगा। यदि क्रोध से कंस ने और कृष्ण को मारने के लिए चिंता करता हुआ क्रोध किया तो उसका क्या हुआ? कृष्ण में निविष्ट हो गया, तो क्या हो गया? मुक्ति मिल गई। उसी प्रकार से यदि कोई काम के द्वारा लालसा से, वासना से भी कृष्ण का यदि स्मरण करे, कोई हर्ज नहीं, किंतु कृष्ण के प्रति हो, तो उसका कल्याण ही होगा। इसका हजारों उदाहरण सब है, श्रीमद् भागवत में नारद जी ने बतलाया है युधिष्ठिर महाराज को, काम से, क्रोध से, द्वेष से, भय से, स्नेह से व काम से, किसी प्रकार से चित्त लगे। एक आदमी कृष्ण की क्रोध हो करके कर रहा तभी मंगल होगा। नारद जी का क्रोध वैसा कैसा है? भक्तों के प्रति भी कोई दोष से, क्रोध से, कोई किसी प्रकार से जाए तो सही। नलकुबर मणिग्रीव की यही दशा हुई, अभिसंपात दिया और जब रोने गिड़गिड़ाने लगे तो अच्छा ठीक है, तुम्हारा जन्म दूसरी जगह नहीं गोकुल में होगा, द्वापर में कृष्ण का जन्म होगा, नंद हवेली के पास ही में दरवाजे पर तुम जमज वृक्ष के रूप में, जमल वृक्ष माने दो एक साथ में के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और कृष्ण तुम्हें स्पर्श करेंगे और उस समय क्या करेंगे? तुम्हारा यह भी संपात दूर हो जाएगा और साथ साथ प्रेम भाजन हो जाएंगे। कुबेरात्मज बद्ध मूर्तय वजदवत त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकंग में प्रयच्छ नमक्षे ग्रहो में स्थि दामोदर। प्रेम भाजौ, प्रेम भाजन किया, वो लोग पेड़ से निकल करके और कैसा किया इसमें बतलाएंगे। तो इसलिए कृष्ण को स्मरण पड़ा, नारद के वचन को सत्य करने के, सत्याभिधातुम निज भक्त भाषितम, भगवान अपनी प्रतिज्ञा याद नहीं रहती, किंतु भक्तों जब प्रतिज्ञा कर देते हैं उनको याद रहती है। प्रतिज्ञा नहीं, ऐसे भी किसी को कुछ कह दिया तो भगवान को याद रहेगी, इसलिए अपने भक्तों के भाषण को जो अभी संपाद दिया है, ये तुम्हारे द्वारा, कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, उनको याद आएगी। और तब सोचते सोचते सोचे जैसे वहां पर चल करके उसको स्पर्श करना है, उनका उद्धार करना है। इसलिए क्या किया, जब ये लोग खोल नहीं सके तो कृष्ण ने कहा कि चलो एक बात करो, सखाऊं, मैं भी खींचता हूं और तुम लोग भी पीछे से ठेलो, जैसे कि हम लोग जैसो ये मैया के आंगन से निकल करके बाहर में खेलेंगे और हो सकता है इसको खोल भी लेंगे। इस तरह से सखा लोग पीछे से ठेलने लगे और कृष्ण भी खींचने लगे और खींचते खींचते द्वारवाजे पर ले गए। नौ यूसुफ। जब कृष्ण उद्धकल को खींचने लगे, सखा लोग पीछे से उसे ठेलने लग गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर जमज वृक्ष खड़े थे, अर्जुन का विशाल पेड़, नीचे से ही दो। कृष्ण अपने दरवाजे से उतरे और ठीक उन दोनों के बीच से होकर के निकल गए, पेड़ को नहीं छुआ। और उद्धकल ऐसे चल रही कि दोनों पेड़ों के अंदर में अटक गई। सखाओं ने बहुत चेष्टा की जे उद्धकल को सीधा करके और पार कर जाए, किंतु नहीं पार कर सके। चेष्टा विफल हो जाने के बाद में कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा सा खींच दिया, यहां पर मार्क करो। कृष्ण ने पेड़ों का नहीं छुआ, रस्सी जो बंधी हुई थी उसे भी नहीं छुआ, जो उनके उधर में बंधी उस रस्सी से भी नहीं छुआ जो यशोदा मैया ने बांधा था। छुआ किससे? उद्धकल से, वो भी जड़। और उसके छूने से ही क्या हुआ, कृष्ण की शक्ति संक्रमित होकर के रस्सी से उद्धकल में आकर के उनके स्पर्श से ही दोनों पेड़ जड़ से उखड़ करके बड़बड़ करके गिर पड़े। बिना आंधी का, बिना तूफान का, बिना वर्षा का, दोनों वृक्ष इतने जोर से गिरे, चारों ब्रज, चारों तरफ में ब्रज में बहुत जोर से शब्द हुआ, हाहाकार मच गया। कहां क्या हुआ, ब्रज में कुछ होने पर लोगों को ये समझ में आता है जी कृष्ण पर कोई विपत्ति आई, बस झट वो नंद बाबा के घर की तरफ में दौड़ते हैं। जब बहुत जोरों से शब्द हुआ तो जो जहां था वहीं से दौड़ा। इधर में क्या होता है, जो ही पेड़ टूटा वो तो भगवान की कुछ इच्छा हुई, जो पेड़ सीधे ऐसे नहीं गिरे, पेड़ गिरे कैसे, ऐसे और ऐसे, बीच में सखा लोग हैं और कृष्ण है, इसलिए कोई सखा पर कोई भी थोड़ा भी आंच नहीं आई और कृष्ण पर भी नहीं, एकदम उधर में साइड में, उधर में यही साइड, यही साइड ये पढ़ लो, माछ खाने सखागण आ कृष्ण सुरक्षित थे के गले। नहीं तो आज के यदि गाछ तहादेर ऊपर पड़तो ताहले की हो तो क्या जाने क्या होता। कृष्ण ने देखा और सखाओं ने देखा कि दोनों पेड़ों से एक एक आदमी निकला, बड़ा सुंदर अद्भुत दिव्य मूर्ति, और निकल करके हाथ जोड़ करके बंधे हुए उखल में और कमर में भी रस्सी पड़ी हुई, और कृष्ण को चारों तरफ से परिक्रमा किया और परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके स्तुति किया जे प्रभो, जहां जहां हमारा जन्म हो, जिस कुल में जन्म हो, स्थावर जंगम जहां पर भी हमारा जन्म हो, आपके भक्तों का संग मिले। आज नारद ऋषि के प्रतिकूल संग से, प्रतिकूल माने क्या, हरि कथा सुनने के लिए नहीं गया, श्रद्धा से नहीं गया ने? और क्रोध से, वे क्रोध में भरे हुए और उनका संग मिला, और हम भी उस सुनने लायक नहीं थे, मत वाले थे अपने पांच मदों में, धन जन्म ऐश्वर्य सूत श्री और मद। और उस समय में नारद जी से, और वो भी हमको अभी सम्पाद दे रहे, आज मैं कोटि कोटि अनंत कोटि वर्ष तक तपस्या करके जो फल नहीं पाता, आज आपके स्पर्श से मुझे हो गया। इसलिए जन्म जहां भी हमारा हो, भक्तों का संग हो और उनके मुख से हम आपकी कथाओं को सुन सके, ऐसे कृपा कीजिए। और हाथ जोड़ करके और यो करके उत्तर दिशा में चले गए। कृष्ण ने क्या किया, कहा कुछ नहीं, किंतु भीतर भीतर उन पर कृपा की। क्या किया कृपा करके, उनको तो उस जोनी से उद्धार किया ही, नारजी का अभिसंपात भी दूर कर दिया, और उनको गोलोक वृंदावन के खास महल में अपना पूर्ण सखा बनाया। कैसा सखा बनाया? क्योंकि उनका नाम रख दिया स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, जो नंद बाबा के और गोपियों की राजसभाओं में वो कृष्ण और गोपियों की ये सब कथाओं को कहते हैं कथावाचक के रूप में। वो कथावाचक हो गए कहां? गोलोक वृंदावन में, वृंदावन में। और नंद की सभा में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ गोपियों की सभा में कृष्ण की कथाओं का ये लोग वर्णन करते हैं। इस पद को पा लिया। नारद जी के क्रोध पूर्वक अभिसंपात से देखो तो ऐसे ही भक्तों का संग विफल नहीं जाता। क्रोध करके शासन कर भींगे तो उनका क्रोध का कारण होता है अनर्थों से ये रहित हो और इनको शुद्ध भक्ति मिले। किंतु कभी कभी हम नहीं समझ पाते, किंतु फल तो उसका कुछ होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। किंतु यदि साधक यदि अपराध करे उनके प्रति तब तो वो कृपा नहीं पाएगा, उसका हकदार नहीं होगा, उसका अधिकारी कृपा का अधिकारी नहीं होगा, तब तब फिर उसका बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि किनका ना, वहां पर नारद जी तो एकदम परम सिद्ध में शुद्ध के परम सिद्ध है ना, उनकी कृपा भगवान की कृपा बराबर है, करी करी भगवान की कृपा से भी बल्कि उनकी कृपा बड़ी है। किंतु यहां पर साधक जो गुरु हैं, मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी भाई, यहां पर कुछ विशेष बातें हैं, इसलिए यहां पर महा अपराध हो जाता है, इसलिए खूब बच करके रहना चाहिए। इसलिए गुरु की कृपा को भी हम अपने ऊपर उनकी कृपा समझेंगे। इधर क्या हुआ? इधर तो ये हुआ बच्चे सब लोग देख करके सहम गए, और इतने में नंद बाबा स्नान करने के लिए ब्रह्मांड घाट जा रहे थे, पेड़ों की गिरने की आवाज सुन करके क्या हुआ, आवाज की तरफ में चले और वहां पर उपस्थित हुए। इधर जसोदा मैया ने देखा, अरे पेड़ गिरा कहां हुआ, तो पासी में बगल में कहीं हमारा बच्चा देखा, अरे बच्चा तो वहां है नहीं, वो लड़के भी नहीं है, तो रास्ते से रास्ते के दरवाजे से ही निकलेंगे, और दरवाजे के पास में पेड़ टूटे हैं, वो भी एकदम डरी हुई वहां पर पहुंची। इतने में जितनी महिलाएं थी सब पहुंचे, ब्रज के जितने वृद्ध लोग थे सभी लोग पहुंच गए, नंद बाबा वहां पर पहुंचे। कृष्ण अब तक चुप थे, शांत थे, उनके आंसू सूख गए थे, किंतु जब नंद बाबा आए निकट में तो देख करके फफन फपक करके रोने लगे। अब तो बड़े जोर से लंबी लंबी सांस लेकर के रोने लगे। किस लिए? यदि दो बालकों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो उसको मार रहा है उसको मार रहा है, और एक बलवान लड़के ने छोटे बच्चे को जरा दो थप्पड़ लगा दिया, तो उस समय नहीं रोएगा, किंतु उसी समय मैया ने अरे क्या हुआ क्या हुआ, तो क्या करेगा, वो रोने लगेगा। आज यदि उस जिसने मारा है उसकी मैया भी आ जाए क्या हुआ, तो क्या करेगा, वो भी रोएगा। मैया को देख करके बाप को देख करके ऐसा ही होता है। जहां नंद बाबा जी आए और डरे हुए, अरे पेड़ गिर गए हैं, आज यदि सीधे गिरते तो क्या होता, आज के यदि सीधा गिर तो पेड़ ताले की हो तो छिलेटा मारा जे तू अमार जे वृद्ध अवस्था ते प्राप्त की हो तो ताले आरो सब छेले यदि थकतो यही 50-60 टिकी 100 ताले की हो तो क्या होता। नंद बाबा दौड़ करके गए और रोते हुए कृष्ण को अपनी गोदी में बैठा लिया, बैठ गए और बड़े लाड प्यार से पूछने गए, बेटा बेटा तुम रो मत, बतलाओ तो किसने बांधा तुम्हें, कौन बांधा, के बांध लो तुम आके, बार बार पूछ रहे हैं। कृष्ण रो रहे हैं खूब जोर से, किंतु सिसकना जरा थोड़ा सा कम हुआ तो कहना चाहते हैं ये मैया ने बांधा, किंतु डर के मारे उनके मुख से ये नहीं निकलता जे मैया ने मारा। प्रेम एक ऐसी चीज है नहीं बतला सके। हाथ अपने पॉकेट से नंद बाबा ने एक लड्डू निकाला और लड्डू लेकर करके कृष्ण सिसकते हुए बालक को हाथ में दिया। जितना बालक रो रहा हो, छोटा सा बच्चा,
कोई खिलौना हो और कोई खाने की चीज हो तो बस रोते हुए भी हंसने लगेगा, मुस्कुराने लग जाएगा और रुलाई बंद हो जाएगी। इसलिए नर्स भावत उसके पिताजी ने स्नेह से लड्डू निकाल करके उनको दिया, कृष्ण ले करके किंतु सिसकते रहे, अभी रोना बंद नहीं हुआ। नंद बाबा ने अरे बतलाओ तो कौन बांधा, कौन बांधा। अंत में उनके कान में ये बतलाया मैया ने, और मैया उस समय कहां है, जरा दूर खड़ी है, और महिलाएं भी दूर खड़ी हैं, जो सोदा जी काटे कटे हुए वृक्ष की भांति माने एकदम सूखे हुए वृक्ष की तरफ में हो गई, न रो पाती हैं, न कुछ कह पाती हैं, न निकट में आ पाती हैं, निकटते आस्ते पारण नहीं, कानते पारण नहीं, क्या नो अमार ए भयंकर भूले द्वारा आज के यही अवस्था, यदि मोरे जे तो ताले की हो तो क्या होता। इसलिए वहीं पर खड़ी है चुपचाप सूखे हुए पेड़ की भांति। नंद बाबा ने कहा कौन मारा कौन बांधा, तो उन्होंने कान में कहा मैया ने। मैया बड़ी निष्ठुर, मैं तो नहीं जानता था कि इतनी निष्ठुर है। अच्छा, बस क्रोध में एकदम भर गए, किंतु ऊपर से कुछ कहा नहीं, देखा वहीं से तिरछी नजर से, और जसोदा जी ने भी देखा और भी उनका चित्त ऐसा हो गया। नंद बाबा ने क्या किया, झट उसको खोलने लगे। अब बड़ी मुश्किल से करते 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 किसी प्रकार से सुन, बच्चों से पूछा अरे ये पेड़ कैसे गिरे, पेड़ कैसा गिरा। बाबा 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 तुतलाते हुए बोलने लगे, वो कृष्ण ने दखल लगाया उखल और फिर पे 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 पेड़ गी 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 गिर गए और फिर उसमें से दो 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 देवता निकले, दे दे देवता निकले, और उन्होंने कक्का कनाई को पपा पप परिक्रमा किया, और पपा परिक्रमा करके उसको हाथ जोड़ करके कुछ कहा, और फिर उत्तर दर्श तरफ इधर में चले गए। बाबा ने ये कभी हो नहीं सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण के खींचने से ये पेड़ नहीं गिर सकते, और उसमें से देवता निकलकर इसकी स्तव स्तुति करेंगे छोटे से बालक की। उन्होंने विश्वास नहीं किया, सोचा जे कंस के किसी दुष्ट असुर ने ऐसा किया, किसी कंस के चरने कंस ने आदेश दिया होगा, वो पेड़ के अंदर में समा हो गया होगा और उसके वजह से ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा होना असंभव है। फिर कृष्ण को बड़े क्रोध में तम तमा गए जसोदा के ऊपर, कुछ कहा नहीं, बड़े गंभीर है ना, साधारण आदमी नहीं है, कृष्ण के पिताजी हैं बड़े गंभीर। उन्होंने बाएं कंधे दाहिने कंधे पर बलदेव जी को, या बाएं गोदी में दाहिने गोदी में बलदेव जी को, और बाएं गोदी में कृष्ण को गोद कन्हैया को बैठाया, और दोनों को बैठा करके वहीं से थोड़ी ही दूर पर है ब्रह्मांड घाट में गए, बच्चों को स्नान कराया, जितने वो कालिखा आंखों का काजल लग गया था मलमल करके धोया और उनको स्नान कराया, और स्नान करके अपने भी स्नान किए, और तब तक कितना बज गया, 12:00 बज गया। कृष्ण ने भी कुछ नहीं खाया, नंद बाबा ने भी कुछ नहीं खाया, आज सवेरे का कलेवा भी नहीं हुआ। उनको स्नान करा करके घर में ले आए, क्या किया, कृष्ण को देखा जी ये बहुत भूखा है बलदेव, गाय के निकट में गए और गाय का दूध दुह करके उनके मुख में लगाया, और मिश्री पॉकेट से निकाल करके उनको मुख दे, धारोष्ण मिश्री के साथ में पेट भर करके दोनों बच्चों को खिलाया। एक गैया कितनी 40 किलो अभी हॉलैंड में दूध देती है, और कृष्ण की गैया कितनी देती होंगी, 40 किलो का कितना 40 किलो दूध से कृष्ण का और बलदेव जी का पेट भर करके यहां पर आए
आज किसी को सास नहीं हुआ, घर में रसोई नहीं बनी बड़ी मुश्किल से, और थोड़ी देर में थोड़ा सा कुछ बनाया किसी ने, और नंद बाबा ने कृष्ण को कुछ खिला दिया या अपने थोड़ा सा ग्रहण करके, कुछ नहीं किया, और किसी से बोले नहीं, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, इतने में शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उपानंद जी की पत्नी जेठानी जी नंद बाबा की भी मैया के समान, और रोहिणी मैया और दूसरी दूसरी महिलाएं वहां पर उपस्थित हुई। बलदेव जी को सिखलाया, अरे दाऊ उसको पकड़ लाना, तो बाबा की गोदी में बैठा है। तो वहां पर जब दाऊ जी जब गए, कृष्ण को पकड़ा था, आज कृष्ण ने ऐसा उसको धक्का दिया जो वो दूर पर गिर पड़े। और दिन में ऐसा नहीं, बलदेव जी देखते रह गए। अब महिलाएं सब निकट आईं, किसी ने कहा अरे बेटा तुम्हारी मैया इतनी रो रही है, चलो मैया के पास। कृष्ण कहा जाऊं हूं नहीं। नंद बाबा ने कहा जब मैया के पास जाएगा, उन्होंने भी कहा, उनको भी दया आ गई, जिसके अभी तक खाया नहीं शाम हो गई, इसकी मैया भी मर रह जाए, इसलिए उन्होंने समझाया नहीं जाएंगे। रोहिणी मैया ने या उपानंद की पत्नी ने, इनकी क्या लगे, कृष्ण की बड़ी मैया, कहा जैसे अरे बेटा जाएगा नहीं, फिर किसके साथ में खेलेगा, तो पिताजी और भैया के साथ खेलेंगे। रोहिणी मैया ने उनको बुलाया कृष्ण को, अरे बेटा आजा। तो वो आज क्रोधित होकर के बोले, मैया आज रोहिणी मैया मैया मैं कर रहा था, तू कहां थी, उस समय तो थी नहीं, उस समय नहीं कहां थी, उपानंद जी के घर में, अब तेरे साथ भी नहीं आऊंगा, उनके गोदी में भी नहीं गई। तब उपानंद की पत्नी ने उनसे कहा, अरे खाएगा क्या, तो पिताजी हमको दूध और मिश्री खिलाएंगे, सोएगा कहां, आज तक तो अकेले नहीं सोया, मैया की गोदी में सोया, अब कहां सोएगा, तो बाबा की गोद में सोऊंगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। उस समय में शायद नंद बाबा ने कहा या उपानंद की पत्नी ने कहा, यदि तेरी मैया जय सिया राम मर जाए तो, ऐसी मरने ही जैसी नौबत है, तो बस सुना जी मैया मर जाएगी मेरे लिए, बस अब रहा नहीं गया, हाथ पसार दिया, मैया मैया कह कर रोने लगे। जब उस समय रोने लगे तो रोहिणी मैया और सब महिलाएं रोने लगी, नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए, सब समाज सब रोने लगा। उस समय में रोहिणी जी कृष्ण को गोदी में लेकर, कृष्ण ऐसे उनकी गोदी में चले गए, और लेकर के जहां यशोदा जी अभी रो नहीं पा रही थी, सूखे हुए काट की तरफ में थी, प्राण का संचार नहीं हो रहा था, उनकी गोदी में बैठा दिया। जब गोदी में बैठा दिया तो एकदम लावा जैसा फूटा, लावा माने पर्वत से जैसे लावा फूटता है ना, अग्नि, उसी प्रकार से अब रोने लगी, बेटा 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 कह कर कर रोने लगी। और कृष्ण क्या करने लगे, वो भी मैया मैया कर कर रोने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना स्तन दिया, कृष्ण से सकते हुए धीरे धीरे दूध पीने लगे, और धीरे धीरे मैया का ये भी शांत जब धीरे धीरे होने लगा, अब तक रसोई नहीं बनी, अब थोड़े थोड़े रोहिणी मैया ने रसोई की व्यवस्था की। नंद बाबा को बुलाया गया, वो आए, कृष्ण और बलदेव दोनों बैठे उनके, जब रसोई सामने आई तो कृष्ण को खिलाया और बलदेव जी को खिलाया, और कृष्ण को कहा बेटा मैया को ले आ, पकड़ ला पकड़ ला मैया को, मैया के धोरे नहीं आ, टेने नहीं आ। आए कृष्ण गए और अपनी मैया का आंचल पकड़ करके खींचने लगे। उस समय कैसी करुण दशा होगी, यशोदा जी अपने आंखों को आंसू को फिर संभाल नहीं सकी, बड़ी पैथेटिक स्थिति है, बड़ी मैंने कैसी पैथेटिक, मैंने हृदय विदारक दृश्य होगा। यशोदा मैया को खींच करके लाए। फिर नंद बाबा ने नीचे नजर करते हुए कहा, तुम नहीं खाएगी तो हम कैसे खाएंगे, हैं? तुम नहीं खाएगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चों को, ये बच्चे हैं ना, मैं तो जानता था तुम निष्ठुर नहीं है। अब ऐसा सुन करके उनके कलेजे में कैसा लगा होगा, यही सुने तार की रोक में लगे। ए इट्स लौकिक सदबंधुवत भाव, कृष्ण इसी के द्वारा ब्रज का भाव होता है। और दूसरा, लाख चेष्टा करो, लाख तपस्या करो, वैदि भक्ति भी करो और भी कुछ करो, नहीं होगा ये सब चीज। यशोदा मैया के अनुगत्य में कोटि कोटि वर्षों तक ऐसा अनुराग पूर्वक उनके अनुगत्य में उनके भावों के लोभ से यदि भजन किया जाए तो यशोदा मैया का भाव हमारे हृदय में आकर के होगा। और यदि गोपियों का पाना चाहते हो तो क्या होगा, श्रुतियों ने जो किया, दंडकारण्य निवासियों ने जो किया, जौथकी अजौथकी ने जो किया, तब तो ब्रज में प्राप्त हो सकता है। नहीं तो लक्ष्मी जी को भी नहीं होगा, जगे पत्नियों को भी नहीं हुआ, पीछे जन्म में कुछ हुआ होगा कि या नहीं मैं नहीं कह सकता, किंतु उस जन्म में तो उनको नहीं हुआ। इसलिए गोपियों के लिए ये महाप्रभु जी ने स्वयं रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को बतलाया कि यह भाव बहुत ही दुरूह है। यहां तक कि सख्य और बात्सल्य अगोचर, सख्य और बात्सल्य के लिए भी अगोचर भाव है ये, केवल मात्र गोपियों के अनुगत्य में भजन करने से, उन्हीं की कृपा से ये भाव हो सकता, अन्यथा नहीं भाई। इसलिए इतना दुर्लभ ये चीज है। और हम लोग भी बामन होकर के चांद के समान इसको देखने के पाने के लिए लालसा कर रहे हैं, किंतु है बड़ा दुर्लभ। इसलिए कठोर साधन भी है, एक पैसे के लिए थोड़ा सा परिश्रम कर दो हो जाएगा। और चिंतामणि करने, चिंतामणि पाने के लिए वो सहज से नहीं होगा, ये चिंतामणि का भी चिंतामणि भाव है। तो इस तरह से फिर नंद बाबा ने यशोदा मैया ने रोहिणी मैया को कहा, जब ये खा लें तो हम उच्छिष्ट पाएंगे। इसके बाद में उन्होंने भी, नंद बाबा ने पाया, बच्चों को खिलाया, फिर यशोदा मैया लेकर, रोहिणी मैया लेकर के आई, यशोदा को खिलाई, सब गोपियों को खिलाई, सब लोगों को खिलाया। इसके बाद में कृष्ण को गोदी में लेकर के, तब तक रात्र हो गई, अब समय हो गया, इसी समय में कृष्ण को गोदी में लेकर के बड़े दुलार से उनको सुलाने लगी। कृष्ण कहा, मैया एक कहानी कहो, मैया एक टी कहानी कहो, तो वो दुलार से कहने लगी। एक रामचंद्र थे, महाराज दशरथ थे, उनके एक पुत्र थे राम, अपने पिता के आदेश से वन में गए, हाँ, और निधि अपल के अभारी हो रही, हाँ, तो वो वन में गए तो उनकी सीता को चोरी कर लिया राम, चोरी कर लिया लक्ष्मण, धनुष लाओ, और ये कह करके जो सो रहे थे वहीं से कूद करके, बस धनुष लाओ आविष्ट में। इस तरह से लीलाएं सब होती हैं ब्रज की। इन लीलाओं का स्मरण भारी नाम करो, और लीलाओं का स्मरण तन नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण रसना मनसी नियोजन तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी कालम नयेद अखिलाम इत्युपदेश। ये समस्त उपदेशों का सार है। आप लोग लीलाओं का स्मरण करते हुए ब्रज की परिक्रमा करें, मन से स्पर्श कीजिए, शरीर से स्पर्श कीजिए, और वैष्णव के अनुगत्य में इस प्रकार से परिक्रमा करके सफल मनोरथ होइए। आज यहीं तक अपना रखेंगे, बोल दीजिए, कैन यू नाउ स्पीक। कल हरि कथा होगी, सवेरे जैसा ही होती है, कल कोई प्रोग्राम नहीं है बाहर का परिक्रमा का, विश्राम है। और परसों हम लोग सवेरे में अपना सारा सामान लेकर के, सामान के साथ में सवेरे निकलेंगे, और यहाँ से मथुरा में अपना सामान रखेंगे मठ में, और रख करके गाड़ी पर चढ़ करके हम लोग भांडी बन जाएंगे, भद्र बन जाएंगे, माठ बन जाएंगे, फिर वहाँ से वो मानसरोवर जाएंगे, फिर वहां से ब्रह्मांड घाट में यमुना में स्नान करेंगे और वहां से फिर महावन में कृष्ण का जन्मस्थली दर्शन करेंगे और वहां से दर्शन करके गोकुल में ही यशोदा मैया ने कहा है कि हमारा निमंत्रण है, तुम लोग वहीं पर प्रसाद पाना, तो वहीं पर हम लोग प्रसाद पाएंगे। और फिर वहां से चल करके रावल में राधिका जी का जन्मस्थल लौह वन का दर्शन करके मथुरा में शाम को लौटेंगे। ये प्रोग्राम है, अभी ये बतलाएंगे। अंडरस्टूड यू या नमीन का कोई भी बात नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, नहीं तो वहां पर सब सामान कौन देखेगा, बंदर सब नो चलेंगे, नहीं असंभव है, बहुत मुश्किल होगा। आप लोग देख लेंगे, विचार कर लेंगे, हमारा ये विचार है, प्रेमानंद से बात कर लें। अच्छा तो हम भी बात कर लेंगे, आप भी बात कर लीजिए, बात करके जो डिसीजन हुआ कल बतलाएंगे। और कल शाम को दोपहर में जो विदेशी लोग हैं, वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट माई प्रोग्राम, सो आई विल कॉल सम इम्पोर्टेंट पर्सन्स डिवोटीज एंड वी विल फिक्स आवर प्रोग्राम फॉर माई टूर एंड ऑल्सो फॉर समथिंग डिस्कसिंग हियर एंड देयर। एंड इन द मिड डे एट 11 वी विल गो टू महेश हियर नियर बाई इन राधा गिरधारी कुंज एंड वी विल टेक प्रसादम देयर
टुमारो।
And in evening at 4, again classes, and so many devotees will speak about bhakti or anything they want to discuss. So here devotees also, Indian devotees also, and foreign devotees. I may call anyone without any notice, they should all be prepared to speak something.
Hare Krishna.